श्री दंडाचार्य विरचित काव्यादर्श काव्य मार्ग विभाग नामक प्रथम परिच्छेद मंगलाचरण चतुर्मुख मुखम भोजवन हंस वधुर मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। चार मुखों वाले ब्रह्मा के मुखो रूपी कमलों के वन में विहार करने वाली हंस वधु हंसी रूपिणी सब अंगों से अथवा सब प्रकार से श्वेत वर्ण वाली सरस्वती मेरे मानस अंतःकरण रूपी मानस नामक सरोवर में सदा विहार करे। आचार्य दंडी ने अभीष्ट ग्रंथ की रचना से पूर्व अनुष्टुप छंद में निबद्ध प्रगति श्लोक में विद्या की अधिकारिणी देवी सरस्वती ग्रंथ रचना काल के दौरान उनके मन में नित्य विहार करें यह प्रार्थना करके मंगलाचरण किया है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के चार मुख विद्या के आदि उत्स हैं, उन्हीं से ज्ञान का चतुरस्त्र प्रवाह वेदवाणी के रूप में प्रवाहित हुआ है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती इसलिए ब्रह्मा के चारों मुखों में रहती हैं। दोष गुण विवेचन गुण के कारण सरस्वती का सादृश्य लोक में नीरक्षीर विवेक के लिए प्रसिद्ध हंसी से है। हंसी को केवल स्त्रीलिंग से न कहकर अल्पवया मुग्धा स्त्री के सूचक वधु शब्द से सरस्वती के नित्य युवती मुग्धा स्वरूप को प्रकट किया है। हंसी लोक में प्रत्यक्ष एवं सरस्वती शास्त्र में दोनों स्वरूपतः सब संभव अंगों में शुक्ल वर्ण वाली हैं। दोनों में जिन अंगों में श्वेतिमा सौंदर्य कारक मानी जाती हैं, उनके वे अंग श्वेत हैं। इसके अतिरिक्त सरस्वती सब प्रकार से वाणी के घटक सर्वविध शब्द और अर्थ तथा इनके संबंध आदि सब अवयवों से सौंदर्य युक्त और निर्दोष होने के कारण शुद्ध हैं। सर्व शुक्ला विशेषण वाणी के प्रकृति में अभिप्रेत रूप काव्य में दोषाभाव और गुण के आधान का भी संकेतक है। यहाँ सरस्वती और हंसी का सादृश्य अविधा से न बताकर सरस्वती पर हंस वधुत्व के आरोप के द्वारा अभेद स्थापना से लक्षणा के द्वारा किया है। इन दोनों में समानता कमलवन में रहने और सर्व शुक्लत्व की है, अतः चतुर्मुख के मुखों पर अम्भोजों का आरोप किया गया है। मुख कमलों में वनत्व का औचित्य चतुर्मुख पद के चतुर से सूचित है। हंस वधुत्वा सरस्वती रूपक रमताम क्रियापद के अधिकरण मानस के श्लिष्ट प्रयोग से पूर्ण होता है। हंस वधु लोक में मानस नामक सरोवर में रहती प्रसिद्ध हैं, तो सरस्वती मानस अर्थात अंतःकरण में। इससे मानस सरोवर के धर्मों स्वच्छता गंभीरता उठती लहरों इत्यादि की छाया अंतःकरण की निर्मलता गंभीरता नव नव कल्पना प्रवणता आदि के रूप में मानस में सूचित होती है। रमताम क्रियापद के आत्मने पद से इस रमण का फल सरस्वती का प्रसाद ग्रंथ रचना के लिए अपेक्षित ज्ञान की निर्मलता प्रार्थीगामी है, अर्थात दंडी यह ग्रंथ आत्मतोष के लिए लिख रहे हैं, यह भाव सूचित होता है। नित्यम क्रिया विशेषेण से ग्रंथ की समाप्ति तक के काल में निरंतरता अभिप्रेत है। सरस्वती पारिप्सित ग्रंथ की समाप्ति तक मेरे मन में विहार करे। कृष्ण किंकर तर्क वागीश ने पूर्वोक्त मम मान से अन्वय के अतिरिक्त मम सरस्वती अन्वय से मेरी सरस्वती पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों के मन में विहार करें, यह भावभंगी भी बताई है। प्रथम पाद में मुख की आवृत्ति तात्पर्य भेद से ब्रह्मा और कमल से संबंध से की गई है, अतः लाटानुप्रास शब्दालंकार है। समूचे श्लोक में श्लिष्ट शब्द निबंधन केवल परंपरित रूपक अर्थालंकार है। प्रतिपाद्य कथन पूर्व शास्त्राणि संक्षिप्य प्रयोगान उपलक्ष्य च यथा सामर्थ्य मस्माभि क्रियते काव्य लक्षणम्। आचार्य उदाहरणों को भली भांति विचार कर अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार हमारे द्वारा काव्य के स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है। आचार्य दंडी ने दूसरे श्लोक में अपने प्रतिपाद्य का कथन विनय भाव से किया है। दंडी से पूर्व काव्य पर समग्र या आंशिक रूप से शास्त्रीय रीति से विचार करने वाले आचार्यों में भरत, शिलाली, काश्यप, वररुचि, मेधावी, राम शर्मा, भामह और विष्णु धर्मोत्तर पुराणकार के नामक टीकाकारों द्वारा दिए मिलते हैं। इनमें से भरत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण को छोड़कर शेष के ग्रंथ नहीं मिलते। भामह का ग्रंथ मिलता है, पर उनकी दंडी से प्राचीनता विवादास्पद है। कोई भी लेखक अपने से पुराने लेखक के मंतव्यों में काटछाट, दोष निवारण, निवारणीय विस्तारता का परिहार तथा परिवर्धनीय संक्षेप का विस्तार उनके गुण दोष के आधार पर करता ही है। इसे ही दंडी ने यह संक्षिप्य पद से व्यक्त किया है। सिद्धांतों का निर्धारण लोक में प्रयोग अभिव्यक्ति के प्रकारों के आलोचना से होता है। दंडी ने भी अपने ग्रंथ में निरूपित काव्य, कथा, आख्यायिका, अभिव्यक्ति की दो शैलियों और उनके गुणों, अलंकारों, दुष्कर चित्र रचनाओं और दोषों का स्वरूप निर्धारण अपने समय तक प्रसिद्धि पा चुके काव्य ग्रंथों के आलोडन से ही पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित लक्षणों की कसौटियों पर जांच परख करके उनमें दोषों भावन और अभिव्यक्ति के नवीन भेदों के उद्भावन से किया होगा। इस उहापोह मंथन के फलस्वरूप उभरे चिंतन को तब उन्होंने ग्रंथ का आकार देने का निर्णय किया। यह समस्त प्रक्रिया उन्हें अभिमानी और उद्धत भी बना सकती थी, पर वे विनीत ही रहे। पूर्व शास्त्रों का संक्षेपण, प्रयोगों का आलोचन और ग्रंथ निर्माण, इन तीनों ही स्तरों पर उन्हें अपनी बौद्धिक क्षमता, घी मति प्रज्ञा एवं प्रतिभा की सीमितता का भान बना रहा। अतः यथा सामर्थ्यम कथन देहली दीप न्याय से संक्षिप्य, उपलक्ष्य और क्रियते तीनों क्रियापदों का विशेषण है। अस्मा भी हमारे द्वारा पद का बहुवचन अपने को आदर देने के अभिप्राय से नहीं, अपितु ग्रंथ निर्माण के स्तर तक पहुँचने में सहायक अपने विद्वान मित्रों, आलोचकों आदि के पूरे समुदाय को अपने अंदर समाहित समझ कर किया है।